हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 34। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीतांबरधारुण बिंबफलधरोष्ठा, पुंड्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णातरं किमपि तत्व अहम् न जाने, यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुवन्ति रे ये स्तवे, वेदे सांगप क्रमोपनिषदे, गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द, श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महाप्रभु महात्मा की जय हो। पहला सिक्कन तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 34। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज सुत्त गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं और श्री प्रभुपाद जी अपने पर्पट में हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान बताएंगे, तो कृपया इन अत्यंत ही सुंदर शब्दों को उच्चारण करते हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, यत्येषो परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्ना इवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। यत्येषो परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्ना इवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। यत्येषो परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्न इवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। यत्येषो परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्न इवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। यत्येषो परता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्न इवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। शब्दों का अर्थ, यत ये शो परता, यत मतलब यदि यानी फिर भी, एश अर्थात वे, उपरता यानी दमित, देवी माया अर्थात महामाया, वैशारदी यानी ज्ञान से पूर्ण, मति अर्थात प्रकाश, संपन्न अर्थात परिपूर्ण एवं निश्चय ही, इति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। इति का मतलब होता है इस प्रकार, विदु मतलब जानते हैं, महिम्नि यानी महिमा में, स्वे महीयते अर्थात स्वे मतलब अपनी, महीयते यानी प्रतिष्ठा। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित यानी महिमा मंडित हो जाता है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्ति के स्वरूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं, इसीलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो चाहने वाले जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के स्वरूप में शमित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को संबंधन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर में बारंबार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव परम भगवान की ऐसी कृपा जब जीव पर परम भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का भोग करता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगु लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारणम्। अत्यंत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान की अद्भुत शक्तियों के विषय में बताया गया है, जिसको यद ये शो परता देवी माया, यानी कि जब देवी माया, अब देखो भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक योग माया होती है, एक वियोग माया होती है, एक अंतरंगा शक्ति होती है, एक बहिरंगा शक्ति होती है। और जो योग माया होती है वो भगवान के साथ मिलाने का कार्य करती है, और वियोग माया जो होती है वो भगवान से दूर करने का कार्य करती है। अंतरंगा शक्ति हमें भगवान के चरणों की ओर लेकर जाती है, और बहिरंगा शक्ति जो है वो भगवान के चरणों से दूर कर देती है। परंतु ये क्यों कर रही है, वो उसकी जो वियोग माया है या जो बहिरंगा शक्ति है उसकी हमसे क्या दुश्मनी है, वो क्यों हमें हमारे कृष्ण से दूर कर रही है, या भगवान ने उसको क्यों बनाया जो हमसे दूर कर हमें उनसे दूर कर रही है। वास्तव में भक्तों, ये हमारी अपनी इच्छा के कारण है, क्योंकि जो जीव भगवान के चरणों की ओर आकर्षित होकर उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं तो भगवान उनको वह सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है तो मेरी सेवा मत करो, मेरी माया की सेवा करो। तो भगवान उनके लिए वियोग माया की स्थापना करते हैं, और जिसके कारण जीव ये याद ही नहीं कर पाता है कि मैं भगवान का दास हूँ। वो समझता है कि मैं स्वयं को खुश करने के लिए ही, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति ही है। तो क्या होता है, तो फिर वो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति या वियोग माया, वो भगवान वो चाहता बोलना है तो भगवान क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानमपो हनम च। क्योंकि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। अब ज्ञान भी मैं दे रहा हूँ और भूलने की जो पावर है ना वो भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन कब देता हूँ, जैसी जिसकी भावना, जैसी रही भावना जाकी। और भगवान तो उनको वैसे ही दिखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान की सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो भगवान वह भी अवसर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं, यद्येषो परता देवी माया वैशारदीमति, यानी कि जब कोई पूर्ण ज्ञान से, जब उसकी मति जो है वो पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, तो महामाया जो कि भगवान से आपको दूर करती है, यानी माया जो है उसका दमन हो जाता है। अब ये भगवान बताते हैं 7.14 में, दैवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्यया। देखो अर्जुन, तुम समझ लो कि जो तीन गुणों से निर्मित मेरी माया है ना, इसको बहुत 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 मुश्किल से जीता जा सकता है। मम माया दुरत्यया, इसको जीतना बहुत कठिन है। भगवान ने कह दिया कि मेरी माया को जीतना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन एक उपाय बताते भगवान। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, मामे वये प्रपद्यन्ते, अगर फिर भी तुम जीतना चाहते हो मेरी माया को, तो एक सरल उपाय है, माम एव, एव का मतलब होता है निश्चय ही, केवल मेरे, भगवान खड़े और साक्ष साफ अपनी ओर इंगित करते कहते माम एव, यदि क्योंकि माया मेरी है, तो यदि कोई मेरी शरण, माम एव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है शरण लेना, माया में ताम तरंती ते, फिर अगर वो कोई मेरी शरण लेता है तो माया से, माया को पार कर देता है। तो यहाँ पर भी बताते हैं कि यदि कोई अत्यंत ही शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है गुरु से और हृदय प्रकाशित हो जाता है, तो महामाया का दमन हो जाता है। और संपन्न एवेति विदुर, और उसको इतना यकीन हो जाता है, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और वो अपने वास्तविक, अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाता है, महिमा मंडित हो जाता है। और श्री प्रभुपाद ने इतना सुंदर बताया है तात्पर्य में, देखो योग माया भी भगवान की शक्ति है, वियोग माया भी भगवान की शक्ति है। वास्तव में भगवान जो है वो परम ब्रह्म है, उनका नाम रूप लीलाएं गुण सब उनसे भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि वियोग माया अलग चीज है, और वो सब भगवान के अंदर ही समाई हुई है, भगवान की ही शक्तियां हैं। जैसे शक्ति, हर कोई शक्ति, जैसे बुद्धि की शक्ति, मेरे अंदर बुद्धि की शक्ति तो क्या करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, मेरे अंदर ना बल की शक्ति तो बल से क्या करते हैं, दूसरा कार्य करते हैं। और मतलब हर कोई शक्ति भगवान के अंदर ही है, तो योग माया भी भगवान की शक्ति है, योग माया भी भगवान की शक्ति है, और उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमता के अनुसार कार्य करती। अब दिव्य शक्ति है ना, उसकी सारी भगवान की शक्तियां हैं, तो भगवान की शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वही शक्ति अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है, यानी कि वास्तव में ये भगवान की शक्तियां हैं। तो वही शक्ति है, ऐसा नहीं है कि भगवान जो है ना वो अलग अलग उसको कर, मतलब भगवान अगर चाहे तो एक शक्ति से दूसरा कार्य भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है वो भले वियोग माया है लेकिन भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करती है। और जब जीव सरेंडर करता है और भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान कहते हैं माया मेतां तरंति ते मामे वये प्रपद्यते। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो ये वाली माया, वही माया जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है, वो तुम उसको पार करके मेरे पास आ जाओगे, यानी कि वो तुम्हें रास्ता दे देगी मेरे पास आने का। तो यहाँ पर भी श्री रूपा जी क्या बता रहे हैं कि वही अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति के रूप में कार्य करती है। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी भी द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं। यानी कि भगवान इतने दिव्य हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान की शक्ति से, एक शक्ति से वो एक ही कार्य करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम जैसे हमारे पास एक शक्ति होगी, हम उससे वही कार्य करवाएंगे, दूसरा कार्य नहीं करवा सकते। लेकिन भगवान जो है वो इतने स्वतंत्र हैं कि किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने बताई है, सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। यानी कि भगवान के लिए ये कोई मुश्किल कार्य थोड़े है। तो हम यहाँ पर जो भटक रहे हैं भौतिक जगत में, जिसको हम माया कहकर पुकारते हैं या वियोग माया कहते हैं या महामाया कहते हैं, वो भले ही हम वास्तविक उसका लक्ष्य क्या है, वो भले ही हमें भगवान से दूर कर रही है, भले माया के चंगल में आकर फंस गया, लेकिन यदि भगवान चाहें तो अपनी इच्छा से इससे इसी माया को योग माया बनाकर इसी माया के द्वारा ही हमें भगवान के पास आने का सु अवसर प्राप्त करवा सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो चाहने वाले जीव को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है। अब चाहने वाले जीव को मतलब जो ये चाहता है कि मैं इसके कारण मोहित हो जाऊं, मैं इस मतलब वो मोहित होना चाहता है, वो संसार में आकर काम वासना में फंसना चाहता है, तो उसी में वो कार्य करवाती है। लेकिन भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के रूप में शमित होती है। ये जो दो लब्ज यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने लिखे हैं ना, उसी पर टिकी होती है एक भक्त की पूरा जो जीवन है ना एक भक्त का, इस दो चीजों पर ही टिका हुआ होता है। क्या लिखा हुआ है? भगवान की इच्छा से, यानी भगवान इच्छा करेंगे लेकिन कब? बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के रूप में। जब एक बद्ध जीव तपस्या करता है और पश्चाताप करता है, यानी कि सबसे पहले तो उसको इस बात की का पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने कितने अपराध किए हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि भगवान मुझ पर कृपा करे, लेकिन कृष्ण की कितनी असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में ग्रहण किया। जैसे एक फकीर को अगर कोई राजा अपनी सेवा में नियुक्त कर दे तो वो कितना उदार फील करेगा, कितना कृतज्ञ फील करता है उसको कि इसमें इस योग्य नहीं था। उसी तरह से हमें अपने पिछले अपराधों को याद करना चाहिए कि हम कितने घिनौनी माया में गिरे हुए थे और कितने बुरे तरीके से हम फंसे हुए थे, लेकिन कितनी करुणा है मेरे कृष्ण की कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया, गुरु महाराज ने मुझे स्वीकार किया। मैंने न जाने कितने कितने अपराध किए होंगे, कितने, जैसे जगाई और मजाई के विषय में हम जानते हैं कि उन्होंने कितने अपराध किए थे, फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब उन्हें अपनी सेवा में स्वीकार किया तो वे कहते थे कि भले आपने हमें क्षमा कर दिया पर हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने इतने अपराध किया, आपने हमें क्यों क्षमा किया, हमें दंड देते तो सही था। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कहा कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि आप अपने पश्चाताप को नहीं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ पश्चाताप करो, तो आप एक घाट बनाओ और वहां पर जो भी आएंगे ना उनको उनकी आप सेवा करो। तो वहां पर जो भी आते थे और वो वहीं पर रहते थे, हमेशा वहीं पर होते थे मदाई, और सबकी सेवा करते थे, जो भी आता था उनके कपड़े धो के देते थे उनको। लेकिन ना उनके अपराध इतने थे कि वो याद कर करके रोते थे, और जो दूसरे लोग भी आते थे ना उनको भी याद आता था कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, और फिर वो क्या करते थे, पीछे से पत्थर मार के जाते थे। वो सेवा भी लेते थे उसकी, और फिर भी बोलते थे देखो पीछे पीछे हमने हमारे साथ तुमने ऐसा किया ना। तो वो पता क्या करते थे, एक पत्थर वो फेंकते थे तो वो वाला भी उठाते थे और चार दूसरे पत्थर भी उठा के देते थे। बोलते थे मैंने कितना घिनौने कितने घिनौने अपराध किए हैं, कितने बलात्कार किए, कितनी चोरियां की, कितना तंग किया तुम सबको, एक पत्थर से कुछ नहीं होगा, तुम लोग तो बोरियां भर के मेरे को मारो, बहुत बहुत मारोगे मुझे, तब भी मेरे अपराधों का शमन नहीं होगा। तो हमें भी याद रखना चाहिए, वास्तव में ना हमारी जो अतीत होता है ना उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये एक डेफिनेटली बात, ये पता है भगवान इसलिए भी करते हैं, हम देखते हैं भक्तों के जीवन में भी होता है ऐसा कि हमारे पिछले बहुत सारे अपराध होते हैं जिन्हें याद कर हमें अपने आप से घिन आने लगती है कि हमने ऐसा किया था। तो ये इसलिए भी होता है ताकि भगवान हमें ये अवसर प्रदान करते हैं। दो चीजें होंगी इससे, एक तो भले आप भक्ति में कितना भी आगे बढ़ जाओगे तो भी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि अतीत याद रहेगा कि मैं कितना घिनौना कार्य कर चुका हूँ, और दूसरा ये पश्चाताप रहेगा कि मैं कितना घिनौना कार्य करता था, उसके बावजूद भी मेरे कृष्ण कितने कृपालु हैं कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। तो यह पश्चाताप हमारे हृदय में जरूर होना चाहिए कि ये मैं बहुत ही बुरा हूँ, लेकिन कृतज्ञता होनी चाहिए साथ में कि कृष्ण ने मुझे, अभी कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि मैं बहुत ही प्योर डिवोटी हो गया हूँ। और प्योर डिवोटी भले कितना भी हो जाओ, लेकिन डिवोटी का मतलब, भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिछले समस्त गुनाहों को भले भगवान ने माफ कर दिया हो, आप अपने आप को कैसे माफ कर सकते हो, आप भक्त हो और आपने इतने अपराध किए होंगे अगर, तो फिर उन्हें याद कर करके भगवान के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, तब पश्चाताप सदैव रहना चाहिए। और गलती तो हर सांस से हो रही है, हर क्षण में हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नाम नो यथात पाप बुद्धि के हम ये सोचते रहें कि भाई मैं नाम जप कर रहा हूँ उधर से मैं अपराध भी कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, नाम जप करने से तो अपराध मेरे समय हो ही जाएंगे, ये तो नाम अपराध में आ जाएगा, फिर तुम्हारे नाम जप करने का भी कोई ना लाभ प्राप्त नहीं होगा जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। तो वास्तव में ये कृष्ण की कृपा है, और हमें हमेशा पश्चाताप, यहाँ पर दो चीजें श्री प्रभुपाद ने बताई हैं कि ये दो चीजें जो हैं वो आपकी महामाया को, जो वियोग माया है उसको योग माया में बदल देंगे, एक तो पश्चाताप और दूसरा है तपस्या। तपस्या का मतलब होता है हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करें, यानी तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ या ऐसी ऐसी तपस्याएं करो, चार चार दिन तक कोई खाना नहीं खाया, या फिर बहुत तेज सर्दी में ठंडे पानी में जाके खड़े हो जाओ, या तेज तेज गर्मी में हीट जला के, कुछ कुछ लोग अपने हिसाब से तपस्या करते हैं, लेकिन ये नहीं। वास्तविक तपस्या क्या है, अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वचनम्। अनुकूलस यानी कि जो कृष्ण की भक्ति में चीजें आपकी बाधा बन रही हैं, आप कृष्ण को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, और जो जो चीजें हमारी कृष्ण की भक्ति में बाधा बन रही हैं, जैसे सबसे पहले क्या है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य, ये सारी चीजों जो कि भगवान की भक्ति में, अत्याहार ज्यादा खाना या जमा करने की कोशिश करना, ये कितना बाधा बनता है, हम भक्ति नहीं कर सकते इसकी वजह से, और हर वक्त मन में यही होता है ये भी खाऊं ये भी पहनूं ये भी खाऊं, ये भौतिक इंद्र तृप्ति की कामना जो है वो कभी, जिसके अंदर इतनी ज्यादा होती है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। अत्याहार प्रयास, और ये प्राप्त हो उसके लिए इतना एक्स्ट्रा स्ट्रगल, ये डिग्री मुझे मिलनी चाहिए, ये डिग्री मिलनी चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने चक्कर में वास्तविक लाभ जो जीवन का है वो भूल जाना। प्रजल्प ये बहुत बड़ी रुकावट है कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। प्रजल्प का मतलब होता है फिजूल बातचीत करना, यानी कि वो बात करना जिसके कारण तुम्हारी भक्ति में उन्नति नहीं हो रही है, यानी कि वो कृष्ण के बदले, कृष्ण के लिए नहीं बल्कि भौतिक लोगों के, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, वो कैसे भक्ति करे। तो भक्त लोग भी आपस में मिलके बात करेंगे तो भी दूसरे भक्त वो सेंटर वाले लोग कैसे भक्ति करें, अरे बाबा तू देख तू कैसे कर रहा है भक्ति। हमें देखना ये है कि हम किस किस तरह से अपनी उन्नति कर रहे हैं भक्ति में, हम क्या भगवान की प्रॉपर सेवा कर रहे हैं, हम अपना जप सही कर रहे हैं, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, कुछ उन्नति हो रही है मेरी भक्ति में, कृष्ण प्रेम में। इतना समय से मैं कृष्ण की भक्त हूँ तो कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में क्या उन्नति की मैंने पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में, आज आज के दिन मैंने क्या कृष्ण के लिए ऐसा किया जिसे देखकर गुरु महाराज ने प्रसन्नता का इजहार किया होगा, या कौन सा ऐसा कार्य मैंने किया होगा जिससे कृष्ण और गुरु महाराज को प्रसन्नता हुई होगी। तो ये कार्य इसके बारे में ना सोचकर हम ये सोचें कि वो कैसे कर रहा, वो कैसे कर रहा, वो कैसे कर रहा, तो ये प्रजल्प और नियमांधरा, ऐसे नियमों को फॉलो करना जो कि भक्ति में नहीं बस भौतिक दिखाने के लिए मैं ये कार्य कर, और इससे कितना अहंकार हो जाएगा, देखो ये सब तो खा रहे हैं सब कुछ और मैंने तो क्या किया, ये तपस्या की, मैं तो ये भी नहीं खा रहा हूँ, मैं तो वो भी नहीं खा रहा हूँ, ये नहीं। मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, पब्लिसिटी नहीं होती है भक्ति में, और जनसंग से, दूसरों की जो भौतिक लोग है ना उनकी संगति से दूर रहना, ये तपस्या है। वास्तव में बहुत मुश्किल है इस भौतिक जगत में दूसरे लोग के साथ दूर रहना, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्योंकि ये तपस्या है, हमें अपनी भक्ति, ऐसे भक्तों के साथ रहकर हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना है और लालच नहीं करना, लौल्यम च। तो ये सारी चीजें जो भक्ति में हमें बहुत पीछे कर देती हैं, उनको अगर हम देखते हैं, ये सारे कार्य करेंगे तो भक्ति में पीछे हो जाएंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे आएंगे। तो ये ना करना तपस्या है, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं खाएंगे तो तपस्या हो जाएगी, वो नहीं खाएंगे तो तपस्या, नहीं। जो भक्ति में हमें प्रतिकूलस्य संकल्प, जो भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं उनका संकल्प करना, ये तपस्या के मुझे ये करना है, एनी हाउ मुझे अपना जप अच्छे से अच्छा करना है, साउंड निकालना है, शब्दों को श्रवण करना है, भगवान की कैसे भी करके समय नहीं मिलता है फिर भी मुझे भागवतम अध्ययन करना है, मुझे भगवान की सेवा किसी भी तरह से करनी है, और है ना शास्त्र अध्ययन करना है, माला कंप्लीट करनी है, मंगला करनी है, संध्या करनी है, प्रभात साधना करनी है, भले उसमें मुझे संतुष्टि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मतलब नहीं कर पा रहा है शरीर के कारण, लेकिन फिर भी मेरे कृष्ण को अच्छा लग रहा है तो मुझे करना है। तो ये तपस्या और पश्चाताप, ये दो चीजें ऐसी हैं जो भगवान को अपनी योग माया, अपनी जो महामाया है, वियोग माया है, उसको योग माया में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। शक्ति भगवान की है, लेकिन जब और वही शक्ति हमें भगवान से मिला देती है, आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर कर देती है। और श्री प्रभुपाद ने एक ना यहाँ पर अच्छा सा दृष्टांत भी दिया है कि जैसे कोई एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होता है ना, वो क्या करता है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी वही होती है, लेकिन वो क्या करता है उसी इलेक्ट्रिसिटी से हीटर को भी ऑन कर सकता है और रेफ्रिजरेटर को, एसी को भी ऑन कर सकता है। अब हीटर क्या होता है, वो एकदम गर्म होता है ना, वो गर्म कर देता है, अगर उसमें किसी इंसान को डालो तो वो पक जाएगा, बारबेक्यू बन जाएगा, और अगर एसी वाले रूम में किसी इंसान को रखो, वही इलेक्ट्रिसिटी है, और उसी के जरिए क्या एसी वाले रूम में आएंगे तो क्या इतना ठंडक लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, गर्मी भी खत्म हो जाएगी। तो ये भगवान की कृपा है और भगवान स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे अपनी शक्तियों के साथ करवा सकते। भगवत कृपा से अंतरंग शक्ति, ये क्या होता है यहाँ, जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर में बारम्बार डालती है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो बहिरंग शक्ति क्या करती है, उसका कार्य है जीव को मोहग्रस्त करना और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाना, और भगवत कृपा से अंतरंग शक्ति में प्रवृत्त होकर जीव को शाश्वत जीवन का जीवन प्रदान करती है। यानी कि वो भगवान की जब कृपा होती, अब ये भगवान की कृपा कब होती, जब हमने पढ़ा जीव एक तपस्या करेगा और पश्चाताप करेगा, ये दो कार्य अगर जीव करता है तो भगवान इतने कृपालु हो जाते हैं कि अपनी शक्ति जो कि उसको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनरपि जननी जठराशयनम जो आग में जलाने वाली थी, वो भगवान के पास लेकर जाती है, अंतरंग शक्ति में परिवर्तित हो जाती है और शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का भोग करता है। और ये कितना आनंदमयी और सुखद समाचार है कि एक समय ऐसा आ सकता है तपस्या और पश्चाताप के जरिए, जब हम तपस्या करते हैं यानी वो कार्य करेंगे जो भगवान के भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि हमें भागवत श्रवण करना चाहिए और मथुरा वास करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। इससे ये सब करके भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे वो बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति बना देते हैं और हम अपने स्वरूप यानी शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का भोग कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।